पृष्ठ संख्या 100 खा छायावादोत्तर काव्य की प्रवृत्तियाँ। उत्तरवादी युग 1936 से 1953 ईस्वी तक आकर काव्य के मानक बदलने लगे। यद्यपि छायावादी कविता ने जीवन सौंदर्य के संगमरमरीय ताज अवश्य बनाए, किंतु वह वायवीय कल्पना और भावना से मनुष्य के भीतर सिरहान और संवेदना पैदा न कर सका। यथार्थ को झेलने और परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत वह न बंधा सका। इसी समय जागरण, रूपाव और हंस जैसी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। परिणाम स्वरूप हिंदी साहित्य में एक नया परिवर्तन घटित हुआ। प्रगतिशील कवि कल्पनाओं से उतरकर सीधे धरती के गीत गाने लगे। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा ने लिखा कि इन्वर्टेड कामा प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया वह साहित्यिक आंदोलन है जिसमें जीवन और यथार्थ के वस्तु सत्य को उत्तर छायावाद काल में प्राश्रय मिला और जिसने सर्वप्रथम यथार्थवाद की ओर समस्त साहित्यिक चेतना को अग्रसर होने की प्रेरणा दी। शिवदान सिंह चौहान और प्रसिद्ध मार्क्सवादी समीक्षक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भी ऐसा ही विचार व्यक्त किया है। छायावादोत्तर कविता की दार्शनिक पृष्ठभूमि में अनेक दार्शनिकों के चिंतन का प्रभाव देखा जा सकता है। कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अतिरिक्त डेकार्त के बुद्धवाद, रूसो के प्रकृतिवाद, सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद, किर्केगार्ड एवं ज्यापाल सार्त्र के अस्तित्ववाद, नीत्से के अनास्थावाद आदि के दार्शनिक वैचारिकी से प्रभावित हैं। इसमें सबसे अधिक प्रभाव मार्क्स और फ्रायड का है। मार्क्स के प्रभाव से आदर्श की जगह यथार्थवाद की जमीन निर्मित हुई, तो फ्रायड के प्रभाव से अवचेतन मन में दबी काममूलक वर्जनाओं की हदें टूटी और कवियों ने उन्मुक्त भाव से काम कुंठाओं की भी अभिव्यक्ति की। ऐसा करने में उन्होंने हिचक और झिझक को आड़े आने नहीं दिया। अनेक प्रतीकों के माध्यम से दमित वासनाओं का चित्रण इन कवियों ने अत्यंत साहस के साथ किया। राजकमल चौधरी की मुक्ति प्रसंग कविता इस तरह की कविताओं का माइलस्टोन है। पृष्ठ संख्या 101 छायावादोत्तर प्रगत प्रयोगवादी काव्य की प्रवृत्तियाँ संक्षेप में अधोलिखित हैं। 1 वैदिकता और सामाजिकता, 2 देशानुराग एवं राष्ट्रीयता, 3 युगबोध और विषमता की अभिव्यक्ति, 4 शोषितों उपेक्षितों के प्रति सहानुभूति, 5 शोषकों पूंजीपतियों के प्रति घृणा, 6 विद्रोह और क्रांति का स्वर, 7 आस्था अनास्था जिजीविषा का स्वर, 8 रागात्मक और ज्ञानात्मक संवेदना, 9 सत्य अन्वेषण और आत्मान्वेषण, 10 प्रेम और सौंदर्य अनुभूति, 11 निराशा कुंठा और वेदना अनुभूति, 12 प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, 13 लोक रागों में नवगीतों का विधान, 14 नूतन शिल्प सौंदर्य अभिधान। छायावादोत्तर कवियों के काव्य में सामाजिक चिंता के साथ ही साथ व्यक्ति के वैयक्तिक सुख दुखों को भी महत्व दिया गया। समाज सत्ता में व्यक्ति सत्ता को तिरोहित कर देना शायद ठीक नहीं, प्रयोगवाद के पुरस्कृता कवि अज्ञेय का मानना था कि व्यक्ति स्वातंत्र व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है। सामाजिक सत्ता से उसकी व्यक्ति सत्ता को आहत करना ठीक नहीं। व्यक्ति यदि स्वतः ही समाज से अपनत्व रखकर उसमें अपने निजत्व का अर्पण कर दे तो यह अलग बात है। इससे व्यक्ति का अहम तुष्ट होता है तथा आत्मोत्सर्ग का भी मार्ग प्रशस्त होता है। अज्ञेय का नदी के द्वीप कविता में नदी समाज सत्ता के साथ द्वीप व्यक्ति सत्ता को इसी रूप में चित्रित किया गया है। किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं, स्थिर समर्पण है हमारा। हम सदा से द्वीप हैं स्रोत स्वनी के। व्यक्तिपरता की यह सोच कहीं संकीर्ण हो जाए, इसलिए मुक्तिबोध कहते हैं। पृष्ठ संख्या 102 याद रखो, कभी अकेले से मुक्ति नहीं मिलती, यदि वह है तो सबके साथ ही। देशानुराग और राष्ट्रीयता की भावना छायावादोत्तर सभी बड़े कवियों के काव्य में पाई जाती है। अज्ञेय, मुक्तिबोध, नागार्जुन तथा धूमिल आदि का नाम इस दृष्टि से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नागार्जुन और धूमिल ने व्यंग्य के माध्यम से जहाँ राजनीतिक दुर्व्यवस्थाओं पर प्रहार किया, वहीं अज्ञेय और मुक्तिबोध ने अत्यंत सपाट और फैंटेसी शिल्प के द्वारा अंधेरे में चल रहे उजाले के खेल का पर्दाफाश किया है। राष्ट्र के उन्नयन की चिंता इन सभी कवियों को है। इसमें आज़ादी के मोह भंग के गहरे भाव भी अनुस्यूत हैं। राम राज्य कविता में नागार्जुन ने गांधी के राम राज्य की खिल्ली उड़ाते हुए कहा, भारत माता के गालों पर कसकर पड़ा तमाचा, राम राज्य में अब की रावण नंगा होकर नाचा। रोटी और संसद कविता में समय को बिंबित करते हुए धूमिल ने स्वतंत्रता के बाद संकीर्ण स्वार्थ और धोखे पर खड़ी टुच्ची राजनीति और सामान्य मनुष्य के साथ उसके विश्वासघात को इस प्रकार चित्रित किया है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। नेताओं का मक्कारापन तथा भ्रष्ट राजनीति व्यवस्था पर पैने व्यंग्य से प्रहार करना धूमिल की कविताओं का केंद्रीय विषय है। युग बोध और विषमता की अभिव्यक्ति भी छायावादोत्तर कविता की एक विशिष्टता है। समाजव्यापी कुरीतियों, विकृतियों, विडंबनाओं, दुख दयनीय पीड़ाओं, जीवन की विद्रूपताओं तथा पूंजीपतियों के अत्याचार और उत्पीड़न का चित्रण इनकी रचनाओं में अत्यंत मार्मिकता के साथ चित्रित है। मुक्तिबोध और नागार्जुन में इसका सबसे विस्फोटक रूप देखने को मिलता है। तुलसी ने कलिवर्णन में अपने समय के समाज की विद्रूपताओं का चित्रण अपने तरह से किया था। पृष्ठ संख्या 103, भुखमरी, अकाल, बाढ़, महामारी, महंगाई, बेरोजगारी आदि का चित्रण इन कवियों ने अपने तरह से किया है। एक कहीं बाढ़ भूचाल कहीं पर, कहीं अकाल कहीं बीमारी, महंगाई की क्या नजीर दूं, मानो द्रुपद सुता की सारी। भूखों मरो, चबाओ पत्ती, मगर अन्न का नाम न लेना, कहीं न तुम भी पकड़े जाओ, कहीं सफाई पड़े न देना। नागार्जुन दो, आज़ादी के 20 बरस से, 20 बरस की आज़ादी से तुम्हें कुछ नहीं मिला, मिली सिर्फ आज़ादी। अगे तीन, समस्या एक, मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में सभी मानव सुखी, सुंदर व शोषण मुक्त कब होंगे? मुक्तिबोध। मार्क्स की चिंतन धारा से प्रभावित होने के कारण छायावादोत्तर प्रगति प्रयोगवादी सभी कवियों के काव्य में शोषितों उपेक्षितों के प्रति सहानुभूति का गहरा भाव पाया जाता है। सदियों सदियों से जो अपनों की ही उपेक्षा के शिकार रहे और अपने अधिकारों को खोकर बद से बदतर जिंदगी जीते रहे, मुक्तिबोध, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, श्रीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, त्रिलोचन आदि के काव्य में इसके अगणित चित्र हैं। नागार्जुन का कथन कि बिड़ला टाटा डाल मियाँ की 300 दिन दिवाली है, लेकिन एक आम आदमी के जीवन में जो घटा है, एक संभव नहीं है कविता में वह सब कह पाना जो घटा है। 20वीं शताब्दी में मनुष्य के साथ कांपते हैं हाथ। दो, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। पृष्ठ संख्या 104, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य की पीड़ा है। मुक्तिबोध। शोषितों के प्रति सहानुभूति ही नहीं बल्कि शोषकों के प्रति घृणा का भाव भी इनकी कविताओं में व्यक्त हुआ है। नागार्जुन और मुक्तिबोध की कविताओं में इन पूंजीपतियों को ही नपुंसक बताया गया है, जो गरीबों के श्रम का पैसा जोड़कर वैभव में जीता है। तार सप्तक की एक कविता पूंजीवादी समाज के प्रति में मुक्तिबोध ने लिखा कि छोड़ो हाय केवल घृणा और दुर्गंध, तेरी रेशमी वह संस्कृति है अंध, देती क्रोध मुझको खूब जलता क्रोध, तेरे रक्त में भी सत्य का अवरोध, तू है मरण तू है रिक्त तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ है। कवि शोषण पर आधारित पूंजीवादी व्यवस्था को ध्वस्त कर देना चाहता है, इसीलिए उसके मरने और नष्ट होने की घोषणा करता है। इस व्यवस्था के प्रति विद्रोह और क्रांति का स्वर भी इन कविताओं में विद्यमान है। जैसे एक, बदला सत्य अहिंसा बदली, लाठी गोली डंडे हैं, कानूनों की सड़ी लाश पर प्रजातंत्र के झंडे हैं, निश्चय राज बदलना होगा, शासक ताना शाही का, पद लोलुपता दल बंदी का, भ्रष्टाचार तबाही का। नागार्जुन। दो, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावी स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। मुक्तिबोध। छायावादोत्तर कविता में ईश्वर का स्थान मनुष्य ने ले लिया, आस्था का स्वर अनास्था में बदल गया, अब आस्था केवल मनुष्य उसके संघर्षों की विजय के प्रति रह गई। आज़ादी का मोहभंग भी इस युग की कविताओं में मुखरित हुआ है। देश के रहनुमाओं के प्रति जनता का विश्वास खंडित हो गया, किंतु जीवन आस्था और जिज्ञासा का स्वर मुश्किल के समाप्त होने और सुबह के होने की बात इनकी कविताओं में संदेश के रूप में छिपा है। पृष्ठ संख्या 105, एक कोशिश करो, कोशिश करो जीने की जमीन में गड़कर भी मुक्ति बोध। दो, समय का कण कण गगन की कालिमा से बूंद बूंद चू रहा तड़ित उजाला बन मुक्ति बोध। तीन, मैंने उसको जब जब देखा लोहा जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। केदारनाथ अग्रवाल। छवादोत्तर कवियों में रागात्मकता का भाव भी अत्यंत गहरा है। नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है मुक्तिबोध की। मैं तुम लोगों से दूर, मुझे कदम कदम पर अज्ञे की बावरा हेरी। भवानी प्रसाद मिश्र की सतपुड़ा के जंगल, नरेश मेहता की समय देवता आदि ऐसी कविताएं हैं। इन कविताओं में प्रकृति कवि की सहचरी है। उसके माध्यम से वह अपने भीतर की रागात्मकता को व्यक्त करता है। जैसे कालिदास, सच सच बतलाना पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष कि तुम रोए थे। नागार्जुन। मुक्तिबोध अपने कविताओं में कभी ज्ञान से संवेदना ग्रहण करते हैं तो कभी संवेदना ज्ञान बनकर आत्मा में ढल जाती है। मुक्तिबोध ने इसे संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन कहा है। सत्य अन्वेषण और आत्म अन्वेषण के सूक्ष्म बिंब भी इन कविताओं में विद्यमान है। जीवन भर के अनुभव संवेदनों को आधार बनाकर आत्मशोधन के द्वारा व्यक्तित्व का परिष्कार करना। पृष्ठ संख्या 106, द्वंद्वों और तर्कों से निकलकर सूक्ष्म सत्य तक पहुँचने का भाव भी यहाँ दिखलाई पड़ता है। असाध्य वीणा का प्रियमवत वीणा को साधते साधते स्वयं को शोधने लगता है। मौन प्रियमवत साध रहा था वीणा, नहीं स्वयं को शोध रहा था। वीणा को साधने का काम बिना शोधन के अभाव में संभव नहीं। यह आत्मन्वेषण भी है और उसका शोधन भी। यह इदम में अहम का विलय है, जिसके बिना सत्य तक पहुँचना संभव नहीं है। मुक्तिबोध भी जीवन पर्यंत अपने अभिव्यक्ति में इसे ही खोजते रहे। खोजता हूँ पठार, पहाड़, समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति, अनिवार्य आत्मसंभवा। प्रेम और सौंदर्य अनुभूति का चित्रण छायावादोत्तर कवियों ने परंपरा से हटकर किया। इनके यहाँ न रीति कवियों की मांसलता है, न छायावादियों की कोरी भावुकता और कल्पना प्रवणता। प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ इन कवियों ने यथार्थ में अपनी प्रणय भावनाओं को व्यक्त किया है। यथा एक, चुका भी हूँ मैं नहीं, कहाँ किया मैंने प्रेम अभी, जब करूँगा प्रेम पिघर उठेंगे युगों के भूधर, उफन उठेंगे सात सागर। शमशेर बहादुर सिंह। दो, चेत उठी ढीली देह में लहू की धार, बेध गई मानस को दूर की पुकार, गूंज उठा दिग दिगंत चीन के दुरंत, यह स्वर बार बार सुनो सखी सुनो बंधु, प्यार में ही यौवन है यौवन में प्यार। अग्गे। पृष्ठ संख्या 107, निराशा, कुंठा और वेदना के भाव भी इन कवियों की कविताओं में अधिकाधिक मात्रा में आए हैं। कहीं आत्महारापन है तो कहीं आत्माधिकारापन, कहीं जीवन के विषाद का घना आवरण है तो कहीं मिलन और बिछुड़न के भाव, कहीं पराजय और पलायन है तो कहीं मृत्यु तक का निरर्थक बोध भी इन कविताओं में देखा जाता है। एक, बुद्ध के स्तूप में मानव के सपने गाड़े गए, ईसा के पंख सब झड़ गए झाड़े गए, सत्य की देवदासी चोलियाँ उतारी गईं, उघारी गईं सपनों की आंतें सब, चीरी गईं फाड़ी गईं, बाकी सब घोल है जिंदगी में झोल है मुक्तिबोध। दो, दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह ना जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। अज्ञेय प्रकृति का चित्रण सभी छायावादोत्तर कवियों के काव्य की एक मुख्य विशिष्टता है। प्रकृति के प्रति कवियों के मन में अनुराग अनादिकाल से चलता आया है। छायावादोत्तर कवियों ने सूक्ष्म प्रतीकों, बिंबों, शब्दों, संकेतों, रंगों आदि के माध्यम से प्रकृति का अत्यंत ही हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं। एक, सो रहा है झोंप अंधियाला, नदी की जांघ पर डाल में सिहरी हुई यह चांदनी चोर पैरों से उझक कर झांक जाती। अग्गे दो, प्रभात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। पृष्ठ संख्या 108, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे घुल गई हो स्लेट पर यह लाल खड़िया चाक, मल दी हो किसी ने शमशेर बहादुर सिंह। तीन, धूप सुंदर धूप में जग रूप सुंदर, सहज सुंदर त्रिलोचन शास्त्री। नए अप्रस्तुत विधानों द्वारा जीवन के आसपास से ही प्रतीकों को लेकर संश्लिष्ट बिंबों के माध्यम से प्रकृति का सौंदर्य निरूपण कर इन कवियों ने पूर्व कवियों के प्रकृति निरीक्षण को अवश्य पीछे छोड़ दिया है। छायावादोत्तर काल में आकर मुक्त छंद ने पूरी तरह से अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। छायावाद प्रगतिवाद और प्रयोगवाद से चलकर नई कविता और नवगीतों में कवियों ने इस छंद को व्यापक स्वीकृति दी। काव्य के साथ अनेक लोक रागों को मिश्रित कर नवगीत की विधा आई, जिसने कविता में खत्म हो रहे छंदों, लयों और रागों की पुनर्वापसी की आस सी बंधा दी। अर्थ के लय की बात कविता में यहाँ पहले पहल देखी गई। शंभुनाथ सिंह, वीरेंद्र मिश्र, ठाकुर प्रसाद सिंह, रविंद्र भ्रमर, सोम ठाकुर, शलभ, श्री राम सिंह, कुंवर बेचैन आदि ऐसे ही नवगीतकार हैं। डॉक्टर जगदीश गुप्त, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, रामदर्श मिश्र, केदारनाथ सिंह आदि ने भी गीतों का सुंदर प्रयोग अपनी कविताओं में किया है। आना जी बादल जरूर, धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, उगेंगे हमारे खेत में आना जी बादल जरूर, केदारनाथ सिंह। रात रात भर मीरा पी के बैरी न नींद न आए, बड़े भोर सारस किंकारे नदिया तीर बुलाए, रामदर्श मिश्र। अरे अब ऐसी कविता लिखो कि जिसमें छंद घूम कर आए, घुमड़ता जाए देह में दर्द, कहीं पर एक बार ठहराए, रघुवीर सहाय। पृष्ठ संख्या 109। इस प्रकार अर्थ के लय की ही नहीं, इन कवियों ने गद्य के लय की भी बात की और उसे अपनी कविता में ढालकर जनता को दिखला दिया कि उनमें भी यह सामर्थ्य है। जयदेव विद्यापति, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा प्रसाद, पंत निराला, महादेवी आदि से आगे बढ़कर इन्होंने युग अनुरूप गीतों की सृष्टि की और उसमें मनुष्य के शाश्वत सुख दुख के भावों को सूक्ष्मता से उकेरा। कविता एक बार पुनः बुद्ध से हृदय की ओर लौट पड़ी। छायावादोत्तर कवियों ने अभिव्यंजना और शिल्प के नए मानक गढ़े। अभिव्यक्ति के खतरों से गुजरते हुए उन्होंने पुराने गढ़ों और मठों को तोड़ दिया। नए अप्रस्तुत विधानों, प्रतीकों, बिंबों, संवादों, मिथकों के साथ ही साथ कल्पना फैंटेसी शब्द प्रयोग तथा शब्दों में नए अर्थ, अनुषंग की तलाश नए कवि की विशिष्टता है। आगे कहते हैं, कवि हूँ नया हूँ, शब्दों की खोज में कहाँ नहीं गया हूँ, चाहता हूँ कि आप एक एक शब्द पर मुझे सराहते हुए पढ़ें। इसमें नया कवि का सबसे अधिक बल बिंबों पर है। वास्तव में शिल्प की दृष्टि से नई कविता बिंबों की कविता है। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने लिखा कि नई कविता ने बिंबों और प्रतीकों के विलुप्तापूर्ण ग्रहण के द्वारा एक और जहाँ सूक्ष्म भाव अस्तरों को मूर्त करने का कार्य किया, वहीं पर हमारी इंद्रिय चेतना को नए यथार्थ के साथ संपृक्त भी किया। इन्वर्टेड कॉमा बंद। शब्द प्रयोग के विषय में उन्होंने लिखा कि इन्वर्टेड कॉमा भाषा के क्षेत्र में नई कविता ने विस्तृत वस्तु क्षेत्र के दायित्व के कारण संस्कृत के विशद कोश से लोक साहित्य के विशालतर कोष तक अपनी गति बनाए रखी। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि नए कवि का यह दावा खोखला नहीं है कि उसने पुराने कवियों की भाषा ही नहीं, पुराने प्रतीकों, बिंबों और मैले हो गए उपमानों को भी त्याग दिया। सीधी सादी सपाट और सरल भाषा में अपने मन के भाव व्यक्त किए, यथा नए साल की शुभकामनाएं खेतों की मेड़ों पर धूल भरे पांवों को, कुहरे में लिपटे उस छोटे से गांव को नए साल की शुभकामनाएं। पृष्ठ संख्या 110। जात के गीत को, बैलों की चाल को, करघे को, कोल्हू को, मछुओं के चाल को नए साल की शुभकामनाएं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इतनी सरल सहज भाषा में पूरी संवेदनात्मकता के साथ नए साल की शुभकामनाएं केवल नया कवि दे सकता है। नया कवि तो भाषा की कम से कम खपत करना चाहता है, इसीलिए वह कहता है, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। शमशेर बहादुर सिंह। यहाँ तक आकर भाषा की भूमिका गौण हो जाती है, उसका स्थान बिंब और प्रतीक ले लेते हैं शिल्प की यह जादूगरी छायावादोत्तर नई कविता के सौंदर्य अभिधान की एक अत्यंतम उपलब्धि है। यद्यपि नए कवियों ने भाषा का प्रयोग बड़ी सतर्कता के साथ किया, किंतु बिंबों और प्रतीकों के अधिकाधिक प्रयोग के कारण कविता गूढ़, अस्पष्ट और अमूर्त होती गई, जिसके कारण रुचि के साथ उसे पकड़ना, समझना और याद करना कठिन हो गया। छायावाद के बाद की कविता में आई इस प्रवृत्ति के कारण अन्य विधाओं की अपेक्षा कविता से लोगों का रागात्मक लगाव कम हो गया। कविता अमूर्तता के दोष से अभिशापित हो गई और यह सिलसिला आज भी थमा नहीं है।